समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कल पुण्यों की चर्चा हो रही थी हमारी, आज मैं शिविर कर रहा था यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में। बहुत सारे गेस्ट आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, लगातार आते रहते हैं, और यहाँ राजयोग शिविर बहुत सुंदर कराया जाता है। आज मॉर्निंग में मुझे भी वहां बैठने का सुअवसर मिला। बहन जी कर्मों के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रही थी और एक बहुत अच्छी बात वो कह रही थी, एक स्टोरी ही सुना रही थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के तीन मित्र थे। एक मित्र था जो हमेशा उसके साथ रहा करता था, दूसरा मित्र था जो हफ्ते 15 दिन में मिला करता था उससे, और तीसरा मित्र ऐसा था जो कभी 6 महीने साल में मिला करता था। एक बार उस व्यक्ति को किसी कारणवश कोर्ट में गवाह की आवश्यकता पड़ी। अब इस व्यक्ति ने सोचा जो हमेशा मेरे साथ रहता है उसे ले चलता हूं। उसने कहा पहले मित्र से जो हमेशा साथ रहता था, चल यार कोर्ट में गवाही देने की जरूरत है, तू कुछ बता देना मेरे फेवर में। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं यहां से हिलूंगा डिलूंगा भी नहीं, मैं वहां जाने की बात तो दूर है। बड़ी निराशा हुई उसे कि सारे समय मेरे साथ रहता है और आज जब मुझे आवश्यकता पड़ी है मेरे साथ नहीं चलना चाहता है। दूसरे मित्र के पास जो हफ्ते में 15 दिन में मिला करता था, उससे उसने कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है, कोर्ट में गवाही देने की जरूरत है। उसने कहा कि मैं कोर्ट के दरवाजे तक तो जाऊंगा लेकिन आगे तुझे ही संभालना पड़ेगा। बहुत निराश हुआ वो व्यक्ति, सोचा कि अरे कोर्ट के अंदर ही नहीं जाएगा, गवाही नहीं देगा तो फायदा क्या होगा। खैर, अब उसने सोचा तीसरे मित्र की याद आई जो 6 माह साल में मिला करता था, कि चलो उससे भी पूछ लेता हूं। तीसरे मित्र से जब उसने बात की तो वो तीसरा मित्र तुरंत तैयार हो गया कि हाँ मैं कोर्ट में चल के तेरे फेवर में गवाही दूंगा। तो बहन जी बता रही थी कि ये तीनों मित्र हैं, मित्रों की पहला जो हमारा शरीर है जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हम सारा कर्म उसके लिए ही करते हैं, बनाना, श्रृंगारना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है ये शरीर पहला मित्र यहीं का यहीं रह जाता है। दूसरे मित्र हैं हमारे मित्र संबंधी, जो हमें केवल शमशान घाट तक ही छोड़ते हैं, उससे आगे नहीं जाते। कितना भी कोई प्यारा हो आपका, आप कहो कि चलो मुझे डर लग रहा है, तो भी वो आपके साथ चिता पे सवार नहीं होंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं यहीं तक हमारा संबंध था, आगे तुम संभालना। लेकिन जो तीसरा मित्र है वो हमारे पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म है, अच्छे संस्कार है जो हमारे साथ चलते हैं, और वो ईश्वर के घर में दर में गवाही भी देते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है, और आगे जो हमारा परलोक है, आगे का जीवन है, वो भी बहुत सुहेला होता है। तो मित्रों कितना कितना सुंदर एक विचारणीय बात है कि कैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, कहाँ हम वक्त दे रहे हैं, जो चीज हमारे काम आने वाली है क्या हम उसके विषय पे भी विचार करते हैं। विचार अवश्य करना चाहिए और ये विचार लगातार समाधान आपको प्रदान करता रहता है। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय प्राता जी का। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
आज की जो कहानी मैंने बहन जी से सुनी थी मुझे बड़ी अच्छी लगी। कल ही हमारी बात पुण्य कर्मों पे हो रही थी प्राता जी, और आज ये बात सुनी तो मुझे
सचमुच ये देह जो हमारा सदा का साथी है
जी,
इसके साथ रहते रहते हम और ये देह इतने एक दूसरे में रम गए हैं कि मनुष्य ये भूल ही गया कि मैं भी इससे कुछ अलग हूँ या मैं तो बहुत पवित्र हूँ। इसको कहते हैं हम कि बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया, तो बॉडी की सारी जो इम्प्योरिटी थी वो जैसे आत्मा में भी समा गई। ये मनुष्य के दुखों का, उसकी अशांति का, उसकी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बना। संबंधी सब जानते हैं, संबंधों में प्यार तो होता ही है और होना भी चाहिए, लेकिन संबंधों के मोहों में स्वयं की स्थिति को बिगाड़ते चलना ये सच्चा प्यार नहीं है। यहाँ सच्चे प्यार की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आत्मिक प्यार ही सच्चा प्यार है और दैहिक प्यार वास्तव में स्वार्थ भरा प्यार है, उसमें वासनाएं रहती हैं, वो प्यार भी मनुष्य को बहुत परेशान करता है। लेकिन अगर हम पुण्य कर्मों की ओर चलें तो वो हमारे सच्चे मित्र बन जाते हैं, सदा के साथी बन जाते हैं। संबंधियों का तो ऐसा ही है, देखिए रोज की कहानियां हो रही हैं। माँ बेटे का बहुत प्यार था, बेटे की शादी हुई, अब दोनों माँ को देखना भी नहीं चाहते, बुरा व्यवहार करते हैं
जी।
पति पत्नी की आज शादी हुई, दोनों का बहुत प्यार था, 6 मास के बाद देखो तो एक का मुंह इधर एक का इधर है। संबंध भी आजकल लंबा समय तक नहीं चल पा रहे हैं, और मैं तो सदा कहता हूं जिन परिवारों में प्यार बहुत है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, जिन परिवारों में खुशी शांति का माहौल है वो तो सचमुच बहुत भाग्यवान हैं, लेकिन अधिक परिवारों में ये क्लिष्टता, ये निगेटिविटी, ये उदासीनता, आपसी टकराव, क्रोध, अहंकार, इन्होंने जो स्थान ले लिया तो परिवारों से, घरों से प्यार के वाइब्रेशन समाप्त हो गए। तो अब जरूरत है हम पुण्यों का खाता भी बढ़ाएं और इन नातों में भी अलौकिकता बने
जी, जी।
और इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी की बहुत बहुत आवश्यकता है।
जी जी जी, मतलब हम जब संसार से रुखसत हों तब तो हमारी ये पुण्य कर्म रहेंगे हमारे साथ, लेकिन जब तक संसार में हों संबंध भी हमारे बहुत
बहुत
जरूरत हों, मधुर हों, ताकि इस जीवन का भी तो हम आनंद लें। और संबंधों में मधुरता होती है तभी जीवन का आनंद आता है, अन्यथा घर हम देर से आने लगते हैं कि घर में गए फिर से वही
शांति
शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे मधुरता की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। लता जी चलिए अब कुछ मेल्स हैं हमारे पास, शिवांग लखनऊ से हैं पहला मेल जिन्होंने हमें भेजा है। ये कहते हैं कि मैं MBA कर रहा हूँ लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन का मैं शिकार हो गया हूँ, दवा भी ले रहा हूँ लेकिन फिर भी दवा काम नहीं कर रही है, कृपया कुछ उपाय बताएं। कई प्रकार से डिप्रेशन आजकल होने लगे हैं, पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो भी डिप्रेशन, या संबंधों में कुछ खिटखिट हो गई है,
संबंधों खिटखिट, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई जिसका दिमाग पर गहरा असर आ गया। जैसे एक लड़की की पीछे बात आई थी कि उसकी पता नहीं दादी की या किसी बड़े की डेथ हुई, बहुत प्यार था दोनों का आपस में, और ये उसके बाद डिप्रेशन में आ गई है, नींद नहीं आती उसको रात को, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो ऐसी भिन्न भिन्न घटनाएं होती रहती हैं जिनके कारण संसार में आजकल ये डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए मनुष्य को अपने को बहुत हल्का रखना ही पड़ेगा। ये जो बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं, एक तो इनको कम करना पड़ेगा
जी।
ये विचारधारा बना ही लेनी चाहिए हरेक को कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही सब कुछ नहीं होगा। एक तो होता है मनुष्य वैसा करें, बच्चे वैसा करें, पत्नी वैसा करें, पर एक है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे संसार में होगा ही नहीं, एक तो ये बात। दूसरा, किसी भी चीज को प्रेशर रूप में लेने का संस्कार, एग्जाम आ रहा है बिना मतलब ही प्रेशर, और भी जैसे भी रिजल्ट आ रहे थे तो कईयों ने फोन किया, एक का फोन तो था कल रिजल्ट आने वाला है क्या होगा, मैं सारा सोई नहीं हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही, पता नहीं क्या होगा। और मैंने कहा अच्छा हो गया तो, कहा तो बहुत अच्छी बात होगी, परेशान क्यों हो रही हो, रिजल्ट तो आ रहा है ना, जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट कर लेना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज का प्रेशर दिमाग पे न लेना, हर बात को टेंशन के रूप में स्वीकार न कर लेना, इन चीजों की आजकल के समय में बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने को बहुत लाइट और बहुत प्रसन्न रखना, इसके लिए लोग फिल्मों में जाते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं, उनसे प्रसन्नता मिल नहीं रही है। प्रसन्नता एक इनर फीलिंग है जो इन बाह्य चीजों से नहीं मिलती, इसके लिए अध्यात्म की बहुत जरूरत मनुष्य को होती है। हर मनुष्य अपने अंदर चला जाए एक बार, रोज अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखे और अपने को भिन्न भिन्न सुंदर विचारों से प्रसन्न करे, तो ये प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है। इन चीजों की जरूरत है कि आजकल के परिवेश में, वातावरण में जो ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इससे हमारे युवक मुक्त रह सकेंगे। इनके डिप्रेशन का जो केस है कि नहीं, इनका पढ़ाई में मन लग रहा है, सारा डिप्रेशन तो ऐसी चीज है, खेल भी घट जाता है। दवाइयों की हम चर्चा कर चुके हैं पहले, दवाइयां एक्चुअली बहुत केसेस में काम नहीं करती, और करती भी हैं तो ब्रेन की स्थिति को डल करती हैं। ठीक है, दवाई भी कहीं ना कहीं लेना तो जरूरी होता है, पर हर डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति ये कहता है कि दवाइयों से उसकी स्थिति और बिगड़ गई है, डोज बढ़ाए जा रहे हैं, फायदा कुछ हो नहीं रहा है। तो इनको दो चार चीजें करनी है। अब अपने लिए रोज आधा घंटा इनको समय देना है। पहले देखिए, डिप्रेशन जहाँ हो जाता है वहाँ मनुष्य मेडिटेशन तो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन उस टाइम काम नहीं करेगी, बौद्धिक क्षमता इतनी डाउन हो जाती है कि वो कुछ भी कर नहीं पाता है। तो मैं शुरू करूंगा इनको, अगर सीवियर डिप्रेशन नहीं है तो रोज रात को सोने से पहले 108 बार लिखें मैं एक महान आत्मा हूं। और अगर मान लो इनको ये लिखना भारी पड़े तो जहां तक ये लिख सकें सुखपूर्वक सहज भाव से 51 लिख दें, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएं ताकि ब्रेन को एक सुंदर एनर्जी जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज है, हम सदा ही सिखा रहे हैं। और एक दूसरी बात भी मैं कह देना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों के लिए, मान लो बच्चा ऐसा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद ये चीज नहीं कर सकता, तो व्यक्ति कोई उसकी माँ या भाई उसके पास बैठे उसे लिखाए, क्योंकि डिप्रेशन में मनुष्य को लिखने में भी डिप्रेशन होता है। कई तो ऐसे आए युवक कहा हमसे तो लिखना ही नहीं आता, कईयों की एजुकेशन ऐसी रही कंप्यूटर से कंप्यूटर लैपटॉप से लैपटॉप और लिखना कुछ आता ही नहीं, कहा 108 बार लिखने के लिए मुझे 2 घंटे लगे, लिखने की आदत नहीं। ये भी खराब बात है, अपनी ये जो असली चीजें हैं इनको मिस नहीं करना चाहिए। कल इलेक्ट्रॉनिक सारा फेल हो जाए, कंप्यूटर न चले, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या हाल होगा। दूसरी चीज, ब्रेन को एनर्जी देना। इसमें मैं सजेस्ट यही करूंगा कि उसकी माँ दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई उसका प्रियजन जो इमोशनली उससे जुड़ा हो उसके ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार याद करके हाथ यहाँ रखेंगे। अब ये बात मैं जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तभी सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हुए भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनको इन चीजों से लेना देना नहीं होता तो वो इस पे खास ध्यान नहीं देते हैं। तो 10 मिनट ब्रेन को एनर्जी दे। और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, उन आत्माओं से क्षमा याचना करना जिनको हमने हजारों साल से कष्ट पहुंचाया है। इवन पशु पक्षियों को भी कष्ट दे देते हैं, प्रकृति को भी कष्ट दे देते हैं, प्रकृति से भी, जीव जंतुओं से और मनुष्यों से, जिनको भी हमने कष्ट दिया है, हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करते हैं, साथ में दुआएं दे दें, सभी सुखी हो जाओ। तो ये जो कनेक्शन है ना निगेटिव एनर्जी, ये कट ऑफ हो जाएगी और हमारा फिर से जस्ट ओपन अप होगा सब कुछ इधर, तब दवाई भी अच्छा काम करेंगी और इस चीज से बाहर आ जाएंगे। और भी अगर कोई सीवियर केस हो तो कोई व्यक्ति 1 घंटा उसको योगदान दे। तो इसको भी जो इनमें से 3 चीजें करना है, चाय पानी चार्ज करके पीना, लिखना और ब्रेन को एनर्जी देना, ये 3 काम तो खुद भी कर सकता है क्योंकि अभी इसकी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, और धीरे धीरे जैसे ठीक हो जाए तो ब्रेन को एनर्जी देना और इफेक्टिवली काम करेगा। और फिर 1/2 घंटा मेडिटेशन रोज करे, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 1 घंटे तक ले जाए, पर 1/2 घंटा। और अगर 1/2 घंटा भारी लगता हो तो 10-10 मिनट करे, 3 बार कर ले दिन में, तो उससे इसको बहुत बल मिलेगा, मन प्रसन्न रहने लगेगा, हल्का हो जाएगा और इसको लगेगा जो एक काले बादल से थे ना ऊपर, वो जैसे छट गए हैं।
दादा जी, एक बात आपने कही कि हम दबाव ना लें, स्टूडेंट्स के लिए भी आपने कही लेकिन ज्यादातर सभी के लिए कारगर है कि लोग अपनी अपनी कोई जिम्मेवारी है, कोई कार्य है, कुछ और चीजें मिली हुई है, एक दबाव के तौर पे लेने की आमतौर पे आजकल आदत हो गई। छोटी भी बात होगी दबाव के तौर पे लेते हैं, उस पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, खासकर विद्यार्थियों की बात मैं कहूंगा। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि इसको इतने मार्क्स लाने ही है क्योंकि हम इतना खर्च कर रहे हैं, टीचर्स को भी बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है, संगी साथियों को भी रहती है, तो आमतौर पे ये दबाव बन ही जाता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो धीरे धीरे ये स्थिति बनती जा रही है। इंजॉय कैसे करें, ये दबाव हटे, इंजॉय कैसे करें, इस पर थोड़ा प्रकाश है।
देखिए सीधी सी बात कि बहुत लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हायर परफॉर्मेंस की,
जी
ऐसा हो ऐसा हो, बाप माँ भी सोच रहे हैं हमारे बच्चे का ऐसा आए, पेपर में नाम आ जाए, बस फर्स्ट 10 जो है टॉपर उनमें नाम है उसका भी, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। तो व्यक्ति को इनको चैलेंज के रूप में लेके उतनी मेहनत करके एंजॉय करना चाहिए, दबाव नहीं, कैसे होगा नहीं, ठीक है हमारे इन सब की एक्सपेक्टेशंस है ना इन हमसे, हम और अच्छा करके दिखाएंगे, हम योग्य हैं तब तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम योग्य न होते तो वो क्यों कुछ सोचते हमारे बारे में, तो हम योग्य हैं और योग्य बनेंगे, ऐसा एक सुंदर संकल्प अपने मन में अगर रख लिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रेशर मन पर बढ़ेगा बनेगा नहीं। और ये मैं सभी के लिए कहता हूँ, चाहे कोई बिजनेसमैन है, घर में माताएं घर का काम कर रही हैं, कोई स्टूडेंट है, डॉक्टर है, लेक्चरर, प्रोफेसर है, अपने हर कार्य को एंजॉय करें। स्टूडेंट अपनी स्टडी को एंजॉय करें, एग्जाम को एंजॉय करें, ये एक मन बना लें, मेंटालिटी ऐसी तैयार करें और सोचना प्रारंभ कर दें, मुझे अपने इस कार्य को एंजॉय करना है। हम देखते हैं कई लोग तो खेल को भी एंजॉय नहीं करते, उसमें भी टेंशन ले आते हैं, लेकिन मुझे हर चीज को एंजॉय करना है, ये एक मेंटालिटी तैयार कर छोटे कार्यों से करें। पानी पी रहे हैं, पानी को एंजॉय करेंगे, वाह प्यास मिट गया, वाह आनंद हो गया, भोजन खा रहे हैं, वाह ओ खाते ही परम आनंद की अनुभूति, वाह हे प्रभु तुमने इतना अच्छा भोजन खिलाया, हे प्रकृति तुमने इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन हमें दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। हर चीज को एंजॉय करें। बाइक चला रहे, कई युवक बाइक चला रहे, फटाफट काट पीट के चल रहे हैं,
तो वो उसको एंजॉय कर
एंजॉयमेंट होता नहीं, वो टेंशन बन रहती है, कई युवक फास्ट गाड़ी चल रही है, टेंशन में चला रहे हैं, ध्यान सारा उधर जाएगा ना, लेकिन एक अच्छी कंट्रोल्ड स्पीड में चले, एंजॉय करते हुए, अपने चारों ओर के माहौल को भी एंजॉय करते हुए, आदत पड़ जाती है, छोटे बच्चों को भी आदत पड़ जाती है प्रेशर रखने की, उससे मुक्त होते चले।
लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिल रहा हो तो वो एंजॉयमेंट खत्म नहीं हो जाता।
बस यही है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए मनुष्य को मेहनत करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल मेहनत का जमाना हो गया है।
हमें याद है
जब हम लोग पढ़ते थे न तो कोचिंग क्लासेज होती थी, बड़ा सहज था सब कुछ, प्रेशर था ही नहीं। आज कंपटीशन का माहौल है और हायर एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, हर चीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी काफी टफ हो गए हैं, तो जिनको कहीं जाना है उनको आशा निराशा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये भी सत्य है। लेकिन फिर भी मनुष्य हिम्मत न हारे, और आज सफलता नहीं मिली तो कल मिलेगी, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं बच्चे तीन तीन साल भी लगे रहते हैं उसमें, और बहुत हिम्मत के साथ बहुत उमंग के साथ लगे रहते हैं तो सफलता मिल ही जाती है। तो इस तरह अपने को एक प्रेशर के अंदर न रखा जाए, क्योंकि प्रेशर से हेल्थ पर बहुत बुरा असर आता है।
जी जी जी, मतलब खुद भी अपने आप को हल्का रखें और आसपास के लोग भी कोशिश करें कि उनको हल्का रखें,
ये बहुत जरूरी रखें, ये बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चे ठीक भी रहते हैं लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं ना वो और ज्यादा दबाव बना रहते हैं।
क्योंकि कहते हैं अभी जस्ट रिजल्ट आए तो नाइन्थ में एक जो उनकी बेटियां थी उन्होंने 70% लाए। अब मम्मी ने बहुत गुस्से से फोन किया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90% लाने हैं और ये 70 लाई है, क्या होगा इसका। और वो पूरे सुबह से उनका भी मूड ऑफ, उस बच्ची का भी मूड ऑफ। तो लगता है कि पेरेंट्स भी कई जगह पे बहुत ज्यादा दबाव
बनाए रखते हैं। और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए हर बच्चे का बौद्धिक लेवल अलग अलग है। अब वो तो हर व्यक्ति चाहेगा कि अब वो 90 आने चाहिए, पर क्या किसी क्लास में सारे स्टूडेंट टॉप मोस्ट थोड़ा ही होते हैं, चाहे 2-4-5 होंगे। बाकी सबको अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उमंग दिलाना चाहिए। उमंग दिलाना बहुत बड़ी बात है, एनकरेज करना, उससे बच्चों में और अच्छी बातें आती हैं, उनका बौद्धिक विकास होता है। और अगर घर में ऐसा माहौल बना दिया जाए तो डल होने लगता है सब कुछ।
जी जी जी, मतलब हल्का माहौल रखना, उनको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं व्रता जी, चलिए अब बात परीक्षा की निकल गई है तो, कि हमारी परीक्षा पूरी हो गई है, अब भी क्या हम योग कर सकते हैं ताकि हम अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकें, क्या इसकी भी संभावना रहती
है? बिल्कुल, इसकी संभावना रहती है। मैंने सुनाया शायद यहीं या क्लास में सुनाया था, एक लड़की मेरे पास आई जिसका 11वीं का शायद एग्जाम था और वो जल्दीबाजी में अपना रोल नंबर कुछ का कुछ लिख गई। अंक तो उसे याद थे पर आगे का पीछे घबराहट में उसकी समझ में नहीं आया, और जब उसे ख्याल आया वापिस आके घर के रोल नंबर तो गलत लिखा गया, तो इसने बहुत अच्छा योग अभ्यास किया उसके बाद, और रिजल्ट आ चुका तो कहा मेरे 70 का वो पेपर था उसमें से 40 मार्क्स आ गए, तो बड़ी खुश थी कि मुझे तो लगता था जीरो होगा, कुछ मतलब ही नहीं था कि कहीं उसमें वो आ जाए। लेकिन योग अभ्यास एक ऐसी चीज है, इसलिए रिजल्ट के लिए भी अगर हम योग अभ्यास करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत होगी मनुष्य को मदद अवश्य मिलती है।
जी 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 जी, पिता जी, हमारे पास जो अगला मेल आया है अमृता सिंह जी ने भेजा है, कहते हैं ओम शांति भाई जी, मैं सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान सफलता मुहूर्त के संकल्प करती हूँ और जिस फील्ड में सफलता चाहती हूँ उसका विजन बनाती हूँ, पर ये करने के बाद मैं सो जाती हूँ तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? और ऐसा ही एक प्रश्न व्रता जी सिद्धार्थ ने भेजा, ये कहते हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए विजन बना रहे हैं और विजन देखने के बाद यदि हम सो जाते हैं तो क्या ये ठीक है, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?
नहीं, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो नहीं, क्योंकि उस टाइम भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और विजन भी उसने स्वीकार कर लिया, जो संकल्प किए वो भी स्वीकार कर लिए, पर बच्चों को तो नेचुरल है ना, बहुत जल्दी उठ के फिर सारा टाइम उठे रहे तो फिर नींद आने लगेगी, इसलिए कोई बात नहीं, सोने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन इतना ही जोर देना है कि जब दोबारा उठे, मान लो 4 बजे ये विजन बनाया और ये सुंदर संकल्प किए और फिर वो सो गए 2-3 मिनट के बाद, अब वो 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठ के उस विजन को रिवाइज करें
जी,
बस इतना ही ये और कर लेंगे तो उस जो इन्होंने रेस्ट लिया है उसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट रिजल्ट पे नहीं आएगा।
बिल्कुल, मतलब ये किया जा सकता है। पति जी, अगला है कामायनी ने भेजा है, ये कहती हैं कि मुझे अपनी पढ़ाई की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है जिसके कारण मुझे नींद भी नहीं आती और मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी होने लगे हैं, तो कृपया बताएं कि मैं इसे कैसे मुक्त हूँ। ये भी पढ़ाई का एक बड़ा ज्यादा लोड, क्योंकि आजकल बच्चों को शायद इस चीज का सबसे ज्यादा मैं कहूंगा सामना करना पड़ता है कि अच्छा रिजल्ट चाहिए। रहता जी, जो चर्चा चल रही थी,
अब देखिए ये ऐसा है कि प्रेशर के कारण इनको रात को नींद नहीं आती, तो इन्हें जानना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, युवा काल है ना, अभी जो 9वीं 10वीं बच्चे हैं वो तो और भी छोटे हैं, इन सब को ठीक ठीक नींद चाहिए, गहरी नींद, चिंता मुक्त नींद, तनाव मुक्त नींद, यानी सो तो रहे और सपने एग्जाम के देख रहे हैं और घबरा रहे हैं, उसने इनसे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन गहरी नींद ब्रेन को एनर्जी देती है और इससे बच्चों की बौद्धिक विकास में बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, इसलिए इन्हें अपनी नींद को तो पहले ठीक करना पड़ेगा, इससे तो कोई फायदा इन्हें नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। बाकी ये आधा घंटा रोज मेडिटेशन करें, उससे भी इनको रिलैक्स फील होगा और अपनी इनर योग्यताओं को बढ़ाएं, इनर टैलेंट्स को बढ़ाएं। चिंता करने से, रात दिन पढ़ते रहने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, हम अपने बुद्धिक विकास पे ध्यान दें, हमारी बुद्धि इतनी सुंदर हो जाए कि एक बार जो कुछ हम पढ़ें बस पढ़ लिया, याद हो गया सदा के लिए, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। और एक विशेष अभ्यास जो हम विद्यार्थियों को सदा सिखाते हैं और बहुत विद्यार्थियों के गुड अनुभव हैं, मतलब ये कहने की बात नहीं, पर मुझे बहुत जल्दी समाचार मिलते हैं कि इस अभ्यास से उनकी एकाग्रता बढ़ गई, उनका बौद्धिक विकास हो गया, और वो ये है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ। अब हम फोकस करेंगे मन और बुद्धि पर, हे मेरे मन तुम शांत हो जाओ, हे मेरी बुद्धि तुम अब एफिशिएंट हो जाओ, तुम्हें बहुत योग्यताएं हैं, तुम बहुत डिवाइन हो, तुम बहुत पावरफुल हो, अब जो मैं पढ़ूं तुम साथ साथ याद कर लेना और सदा याद रखना, एग्जाम के समय इमर्ज कर देना। ऐसा अभ्यास ज्यादा बच्चे ना करें, सवेरे और रात को सोने से पहले 2 बार भी कर लिया करें तो मन शांत रहने लगेगा, बौद्धिक विकास होने लगेगा और इसका इफेक्ट पढ़ाई पे बहुत आएगा, मुकाबले वशिष के कि साक्षा रात बैठ के पढ़ रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही और टेंशन भी हो रही है और दबाव भी बना हुआ है, नींद भी नहीं आ रही, इसकी जरूरत नहीं, अच्छी तरह सोएं और जो टाइम पढ़ाई के लिए है उसको इस तरह अभ्यास के बाद करें तो रिजल्ट सुंदर होंगे।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, चलिए सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे हों और जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से हल्के भी होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अभ्यास वो करें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तनाव की आवश्यकता नहीं है, हर चीज को इंजॉय किया जाए। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि पर आनंद के लिए भेजा है, सुख के लिए भेजा है, शांति के लिए भेजा है। जैसे 3rd फ्लोर पे 5th फ्लोर पे मम्मी पापा रहते हैं, हम वहां पे रहते हैं, नीचे बड़ा सा प्लेग्राउंड है, तो मम्मी पापा हमें प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भेजते हैं ना कि जाओ थोड़ा एंजॉय करो, खेल के आओ। तो भगवान ने भी ऊपर के फ्लोर से हमें यहाँ भेजा है एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए, जीवन का आनंद, ताकि हम भी आनंदित हों, दूसरे भी आनंदित हों। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, हर जगह हम आनंद को अवश्य ढूंढ लें। यदि विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे कलयुग है, परिस्थितियां तो होंगी, लेकिन फिर भी यदि आनंदित रहने का मेरा संस्कार है, स्वभाव है, आनंद बांटने का स्वभाव संस्कार है, तो सचमुच आनंद की सरिता ही प्रवाहित होगी। कई लोग ज्यादा दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं तो बातें बिगड़ने लगती हैं, रिजल्ट भी बहुत ही कम आता है। यदि आनंद के साथ कोई कार्य करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसे आप करके देख सकते हैं। तो क्यों ना थोड़े आध्यात्मिक चिंतन के साथ, यदि सुबह सुबह मेडिटेशन कर लें, कनेक्ट कर लें अपने आप को उस परम सत्ता से जिसने हमें सृष्टि पर भेजा है, वो आनंद के सागर है ना, तो हमारे अंदर भी आनंद की सरिता फूटने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी, और सारे दिन हम अपने हर कार्य को एंजॉय भी करेंगे और दूसरों को भी आनंद प्रदान कर सकेंगे। इसीलिए मेडिटेशन किया कीजिए, अध्यात्म की ओर बढ़िए और उस आनंद के सागर के साथ अपना संबंध बना के रखिए, तो सचमुच जीवन आनंद से, खुशहाली से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहां, सारा ये जहां कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।